तो पच धातु को नानार्थक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसमें जो अनेक शक्यता वच्छेदक हैं उसका एक अनुगमक होता है। हरि शब्द में अनेक शक्यता वच्छेदक का एक अनुगमक नहीं होता, इसलिए उसको नानार्थक माना जाता है। हमने आपको शक्यता वच्छेदक भी समझा दिया था कि जितने भी अर्थ होते हैं ना उसमें त्वा लगा दीजिए, जैसे अनेकों व्यापार हैं फूतकार अध संतापन यत्न, उसमें त्वा लगा दीजिए तो होगा फूतकारत्व अध संतापनत्व यत्नत्व। तो ये जो त्वा वाला जो शब्द है ना इसी को शक्यता वच्छेदक कहते हैं। शक्य माने अर्थ और उसको अलग करने वाला जो धर्म है वही हुआ शक्यता वच्छेदक। तो इस तरह से अनेक शक्यता वच्छेदक है पच धातु में किंतु उसका एक अनुगमक है, वह एक अनुगमक कौन है तो बुद्धि विशेष आदि। ये हम समय के अभाव में इस पहले पाठ में नहीं बता पाए थे, ये बुद्धि विशेष आदि ही जो है ना अनुगमक होता है और वह एक होता है, इसीलिए नानार्थक शब्द नहीं है पच धातु। अब इसको समझना है कि ये बुद्धि विशेष आदि क्या है, तो अगर आप ये कापी कलम सामने हो तो आप दो शब्द को लिख लीजिए। एक शब्द है बुद्धिस्थत्व, बुद्धिस्थत्व बुद्धि लिख करके उसमें स्थ लगा दीजिए और त्व लगा दीजिए बुद्धिस्थत्व, और दूसरा शब्द है बुद्धि विशेष विषयता वच्छेदक, बुद्धि विशेष विषयता वच्छेदक, बुद्धि विशेष विषयता वच्छेदक। इन दोनों में से किसी को भी एक को आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो ग्रंथ में कहा गया ना बुद्धि विशेषादेहे, तो बुद्धि विशेष का मतलब यहाँ पर है बुद्धि विशेष विषयता वच्छेदक, और आदि जो है ना आदि का मतलब है बुद्धिस्थत्व, दोनों एक ही चीज है। तो ये जो है ना अनुगमक बुद्धि विषय विशेष विषयता वच्छेदक नाम का जो अनुगमक है, अनुगमक माने निर्णायक है, वह एक होता है, इसीलिए पच धातु नानार्थक नहीं है। ऐसे ही अगर हम बुद्धिस्थत्व को ले लें तो बुद्धिस्थत्व जो है यह शक्यता वच्छेदकों का एक अनुगमक है, इसलिए यह नानार्थक नहीं होता। यह तो बात रही पिछले पाठ वाली, अब आगे का पाठ देखते हैं। आगे पुस्तक में लिखा है आख्याते क्रिया एकत्व व्यवस्था अपि, ताकि आख्यात, आख्यात मतलब होता है यहाँ पर तिंगंत, कि तिंगंत में क्रिया एकत्व व्यवस्था माने जैसे पचति कहते हैं तो उसमें कितनी क्रिया है, एक ही क्रिया है, कौन है पाक क्रिया। तो आख्यात में माने तिंगंत पद में पचति करोति पठति इत्यादि पद में क्रिया एकत्व व्यवस्था, एक क्रिया की व्यवस्था होती है माने एक क्रिया ही मानी जाती है। वो एक क्रिया कैसे मानी जाती है, जब अनेकों क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया कैसी मानी जाएगी, तो आगे लिखते हैं अवच्छेदक बुद्धि विशेष ऐक्यम आदाय एव। वो जो अवच्छेदक बुद्धि विशेष है वह कौन होता है अवच्छेदक बुद्धि विशेष, तो जो मैंने लिखाया था ना, एक लिखाया था बुद्धि विशेष विषयता अवच्छेदक, उसी को यहाँ पर कहा गया अवच्छेदक बुद्धि विशेष। यह जो बुद्धि विशेष विषयता अवच्छेदक है वह एक ही होता है, उस एक के होने के कारण ही जो है ना क्रियाओं को एक क्रिया माना जाता है। कहा कि इसमें प्रमाण कुछ है, कहा कि हाँ है, उक्तंच वाक्यपदीय, वाक्यपदीय में प्रमाण बताया गया है कि गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रम जन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पित अभेदः क्रिया इति व्यपदिश्यते। यहाँ जो है ना क्रिया इति व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते माने कथ्यते, माने उसको क्रिया कहा जाता है, क्रिया इति व्यपदिश्यते उसे क्रिया कहा जाता है। किसे क्रिया कहा जाता है, तो ऊपर में देखिए लिखा है ना गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रम जन्मनाम। क्या होता है कि जब कोई क्रिया होती है ना तो उसमें दो तरह की क्रिया होती है, एक तो अवयव क्रिया होती है और एक समूहात्मक क्रिया होती है। तो समूहात्मक क्रिया में सारे अवयव उसमें विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब जैसे समूहात्मक क्रिया हो गई पाक क्रिया, और उसमें अवयव क्रिया हो गई फूतकार क्रिया, अधा संतापन क्रिया, यत्न क्रिया, ये सब जो है अवयवात्मक क्रिया हो गई। तो वही कह रहा है कारिका में कि गुणभूते अवयवे समूह, माने अवयवों के द्वारा समूह बनता है। जैसे अनेक व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनको समूह कहा जाता है ना, व्यक्तियों का समूह। ऐसे ही अनेक जो क्रिया के अवयव हैं, अवयव माने भाग, टुकड़ा, अंश, कुछ भी कह लीजिए, तो और वह अवयव क्या होते हैं, गुणभूत होते हैं। गुणभूत का मतलब यहाँ पर होता है विशेषण, प्रकार। तो विशेषण के रूप में क्रिया के अवयवों के द्वारा समूह समूह उत्पन्न लेता है। और वह जो समूह होता है ना, वो कैसे, तो क्रम जन्म ना, माने एक ही बार में समूह नहीं हो जाता है, उस समूह का क्रमिक जन्म होता है। जैसे एक समय में फुतकार होगा, फिर अगले समय में जो है अधा संतापन होगा, इस तरह से अनेकों क्रियाएं क्रम से होती चली जाएंगी। क्रम जन्म नाम, क्रम से उसका जन्म होगा अवयव क्रिया का, और अवयव क्रियाओं का क्रमिक जन्म होने के बाद उन सब क्रियाओं को मिला करके समूह एक समूह बनेगा। और वह जो समूह होगा उसमें बुद्धिया प्रकल्पित अभेदः, अभेदः माने एक, उसमें क्या करेंगे, अनेकों क्रियाओं के समूह में बुद्धि से जो है ना एक क्रिया मान लेंगे, क्योंकि बुद्धि में वो भले ही क्रिया अनेक हो लेकिन बुद्धि में वह एक ही क्रिया होगी, पाक क्रिया। तो इस तरह से अनेक अवयव क्रियाओं के द्वारा जो एक क्रियात्मक, एक समूहात्मक क्रिया होती है, उस समूहात्मक क्रिया में बुद्धि के द्वारा एक मानते हुए कहते हैं कि क्रिया एका क्रिया इति व्यपदिश्यते, एक क्रिया का जो है व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो ये बुद्धिया प्रकल्पिता भेद का, ये बुद्धिया का मतलब वही है अनुगमक, अनुगमक का मैंने फिर से बता दूं, वही बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धि विशेष विषयता अवच्छेदक। तो वह जो बुद्धि विशेष विषयता अवच्छेदक जो एक है, उस एक होने के कारण ही क्रिया को एक कहा जाता है। इस तरह से वाक्यपदीय कारिका के द्वारा अपने तर्क को वैयाकरणों ने प्रमाणित किया कि पच धातु जो में जो पाक क्रिया है वह अनेक अवयव क्रियाओं से बनने वाली क्रिया है, लेकिन वह एक क्रिया होती है क्योंकि उसका जो है अनुगमक एक होता है। इस तरह से पहली जो पंक्ति थी कारिका की, ये जो फल व्यापार यो धातु आश्रय तु तिंग स्मृता वाली जो कारिका थी, उसमें पहली पंक्ति क्या थी, फल व्यापार यो धातु, अर्थात धातु वाचक है और फल और व्यापार जो है उस धातु का वाच्य है, ये जो कहा गया था उसका विवेचन ग्रंथकार ने यहाँ तक किया। क्या किया विवेचन, तो फल के संबंध में बताया कि फल क्या होता है, व्यापार के संबंध में बताया कि व्यापार क्या होता है। अब दूसरी जो पंक्ति है आश्रये तु तिंग स्मृता, इस पंक्ति की व्याख्या जो है कौंड भट्ट अब यहाँ से आगे करने वाले हैं। इसीलिए आप अपनी पुस्तक में देखिए लिखा है धात्वर्थम निरूप्य तिंगर्थम आह, इससे पहले धात्वर्थम निरूप्य मान धातु के अर्थ का निरूपण किया गया, अब तिंगर्थम आह, आह माने ब्रूते कथयति कहता है, तो अब जो है तिंग के अर्थ को कहा जाता है। क्या है तिंग का अर्थ, तो पंक्ति में है ना कारिका में आश्रये तु तिंग स्मृता, मैंने भी आपको अर्थ सिखाया था कि तिंग का अर्थ होता है आश्रय, लेकिन इतना कहने से जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये व्याख्या करते हैं आश्रये तु इति का क्या मतलब है। तो आगे लिखते हैं फलाश्रये व्यापाराश्रये च इत्यर्थ, ऐसा है कि आश्रय जो है अनेकों प्रकार के हैं, हजारों अनंत हैं आश्रय, लेकिन आश्रये तु तिंग स्मृता में जो आश्रय लिया जाएगा वो दो ही प्रकार का आश्रय लिया जाएगा, एक लिया जाएगा फल का आश्रय और एक लिया जाएगा व्यापार का आश्रय। तो फल का जो आश्रय है उसको फलाश्रय कहेंगे और व्यापार का जो आश्रय होगा उसे व्यापार आश्रय कहेंगे। तो इस तरह से पहले आपको अगर पूछा जाता कि तिंग का क्या अर्थ है, तो आप कहते कि तिंग का अर्थ आश्रय है। अब जबकि आप समझ गए कि आश्रय का मतलब यहाँ पर होता है फलाश्रय और व्यापाराश्रय। तो अब अगर कोई पूछे कि तिंग का क्या अर्थ है तो क्या कहेंगे कि तिंग का अर्थ है फलाश्रय और तिंग का अर्थ है व्यापार आश्रय। ठीक है यहाँ तक। अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये फलाश्रय क्या होता है, व्यापार आश्रय क्या होता है। फलाश्रय मतलब फल जिस पर बैठता है, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो कुर्सी हो गया हमारा आश्रय। जैसे सौरभ है, सौरभ जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है तो कुर्सी का नाम क्या होगा, सौरभाश्रय, क्योंकि सौरभ का वह कुर्सी जो है आश्रय है। इसी तरह से फलाश्रय मतलब फल जिस पर बैठता है वह हो गया फलाश्रय। ऐसे ही व्यापाराश्रय मतलब व्यापार जिस पर बैठता है वह हो गया व्यापाराश्रय। लेकिन फल किस पर बैठता है, व्यापार किस पर बैठता है, ये मन में जिज्ञासा होगी, इसलिए आगे व्याख्या करते हैं कि फलाश्रय कर्म व्यापाराश्रय कर्ता। ताकि फल का आश्रय कौन होता है तो कर्म होता है, और व्यापार का आश्रय कौन होता है, कर्ता होता है। थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे चैत्र तंडुलम पचती, चैत्र नाम का जो व्यक्ति है वह तंडुल को पकाता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं ना कि पच धातु के अर्थ के प्रयोग में फल क्या होता है, विकृति होती है फल। तो विकृति नाम का जो फल है वह उसका आश्रय कौन है, चैत्र नाम का रसोईया आश्रय है या तंडुल आश्रय है। तो आप कहेंगे ना कि तंडुल आश्रय है, क्योंकि विकृति किसमें रहेगी, तंडुल में विकृति रहेगी। तो फलाश्रय फल जो है विकृति उसका आश्रय कौन है, तंडुल। तंडुल क्या है यहाँ पर, कर्म है। चैत्र तंडुलम पचती में तंडुलम क्या है, कर्म है, इसलिए कर्मणि द्वितीया, उसमें द्वितीया विभक्ति आई है। तो फल का जो आश्रय होगा वह कर्म ही होगा। ऐसे जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए कि राम ग्रामम गच्छति, तो यहाँ गच्छति में गम धातु है, उसका फल क्या होता है, संयोग। तो संयोग रूपी फल का आश्रय कौन है, ग्राम है, क्योंकि ग्राम के साथ राम का संयोग होता है। इस तरह से फलाश्रय का मतलब हो गया कर्म, और व्यापाराश्रय का मतलब होता है कर्ता। अब जैसे राम ग्रामम गच्छति में कौन सा व्यापार है, तो गमन व्यापार है। आप याद है ना, व्यापार और क्रिया एक ही चीज है। तो यहाँ पर कौन सा व्यापार है, गमन व्यापार है। तो गमन व्यापार किसमें रहता है, तो राम में रहता है, आकि गांव में रहता है। अगर गांव में रहेगा व्यापार तो गांव जो है ना यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन ऐसा गांव तो यहाँ से वहाँ नहीं जाता है ना, राम नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ से वहाँ जाता है। इस तरह से व्यापार जैसे क्षेत्र तंडुलम पचती, यहाँ जो पाक व्यापार है वह उस व्यापार का आश्रय कौन है, चैत्र नाम का व्यक्ति है जो पाचक है, रसोईया है। इस तरह से फल हमेशा जो है कर्म में कर्म पर बैठता है, और व्यापार जो है हमेशा कर्ता पर बैठता है। तो अब देखिए, अब आपकी व्याख्या बदल जाएगी। आज के पाठ से पहले पूछा जाता कि तिंग का अर्थ क्या है, तो आप कहते कि तिंग का अर्थ आश्रय है। जब आपने ये समझ लिया कि आश्रय का मतलब फलाश्रय व्यापार आश्रय होता है, फिर पूछा जाएगा कि तिंग का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे तिंग का अर्थ है फलाश्रय और व्यापार आश्रय। अब जबकि आप समझ गए कि फलाश्रय मतलब होता है कर्म और व्यापार आश्रय मतलब होता है कर्ता, तो अब अगर पूछा जाए कि तिंग का क्या अर्थ है, तो क्या कहेंगे कि तिंग का अर्थ कर्म होता है और तिंग का अर्थ कर्ता होता है। यही फाइनल है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि फाइनल में अर्थ गुरुजी ने क्या बताया आपको कि तिंग का अर्थ कर्म और कर्ता होता है, लेकिन इससे पहले कर्म कर्ता नहीं कह करके क्या कहा था, फलाश्रय और व्यापार आश्रय। तो इसमें तो दो दो शब्द हैं ना, फलाश्रय में एक फल है दूसरा आश्रय है, व्यापार आश्रय में भी एक व्यापार है और दूसरा आश्रय है। तो जब दो दो अर्थ बताए गए तो फाइनल में गुरुजी कैसे कह रहे हैं कि तिंग का अर्थ जो है कर्म और कर्ता ही होता है, कहना चाहिए फलाश्रय और व्यापार आश्रय होता है। तो ये जो प्रश्न है आपके मन में उठ रहा होगा, उसका समाधान ये है कि ऐसा है कि शब्द का अर्थ जो है ना किसको माना जाता है, सवाल ये है। तो जो अनन्य लभ्य होता है वह शब्द का अर्थ माना जाता है। ये अनन्य लभ्य क्या है, अनन्य लभ्य का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे का अर्थ न हो, वह अर्थ जो है शब्द का माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि गजह माने हाथी क्यों होता है, अश्वह माने घोड़ा क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप इस ये कहेंगे कि अश्व का ही अर्थ घोड़ा है और किसी दूसरे शब्द का अर्थ घोड़ा नहीं है। गजह का अर्थ ही हाथी है और किसी दूसरे शब्द का अर्थ हाथी नहीं है, मतलब अनन्य लभ्य है, अन्य शब्द के द्वारा यह अर्थ लभ्य नहीं है, इसलिए अश्व का अर्थ घोड़ा है, गजह का अर्थ हाथी है। ऐसे ही यहाँ पर भी दो है ना, फल और आश्रय। तो फल अर्थ किसका है? धातु का। कहा गया ना फल व्यापार यो धातु, तो फल अर्थ तो धातु से आ जाएगा, ऐसे ही व्यापार अर्थ जो है वह धातु से आ जाएगा। तो अन्य जो है धातु, उस अन्य धातु से फल और व्यापार अर्थ जो है लभ्य हो गया, प्राप्त हो गया। बाकी क्या बचा, शेष क्या बचा? आश्रय बचा। तो जो शेष अर्थ बचा, जो किसी दूसरे का अर्थ नहीं है, वही अर्थ जो है तिंग का माना जाएगा। यही बात यहाँ पंक्ति में कह रहे हैं कि तत्र फल व्यापारयो हो धातु लभ्यत्वात्। फल अर्थ और व्यापार अर्थ जो है वह धातु से लभ्य है, माने धातु के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो जो बच गया, जो अनन्य लभ्य अर्थ है, फल और व्यापार क्या है? अन्य लभ्य अर्थ है, और आश्रय अर्थ क्या है? अनन्य लभ्य अर्थ है, मतलब किसी दूसरे शब्द का अर्थ नहीं है, इसलिए तिंगह तदन से शक्ति। इसलिए तिंग का आश्रय अंश में ही शक्ति मानी जाती है, माने तिंग का अर्थ जो है केवल आश्रय माना जाता है, फल और व्यापार इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि अन्य लब्धत्वात् वह अन्य जो है धातु, उससे ही उस अर्थ का लाभ हो जाता है। शक्यता व छेद कंच आश्रयत्वम। तो मैंने बताया था कि शक्य माने अर्थ होता है, और शक्य में रहने वाला जो भाव है उसको शक्यता कहते हैं, और शक्यता को जो अलग करने वाला होता है उसको शक्यता व छेदकम कहते हैं। तो यहाँ पर तिंग का शक्य क्या है? आश्रय। शक्यता किस में रहेगी? आश्रय में रहेगी। शक्यता व छेदक कौन होगा? उसमें त्व लगा दीजिए तो आश्रयत्वम। तो आश्रयत्व जो है वह शक्यता व छेदक है, और वह आश्रय वही का सकता व छेद कंच आश्रयत्वम, माने तिंग का सकता व छेदक है आश्रयत्व, और वह आश्रयत्व कैसा होता है? तो तत्त शक्ति विशेष रूपम। तत्त शक्ति माने शक्ति जो अनेक प्रकार की मानी गई है, जैसे कर्मत्व शक्ति, करणत्व शक्ति, अधिकरणत्व शक्ति, ये जो तत्त शक्ति इसी का नाम है। तो कर्मत्व शक्ति, करणत्व शक्ति आदि जो विशेष रूप है वही आश्रयत्व होता है। इति सुवर्थ निर्णये वक्ष्यते। ये बात जो है विस्तार से सुवर्थ प्रकरण में आपको बताया जाएगा। जैसे ये धात्वर्थ निर्णय नाम का प्रकरण है ना, इसी तरह से सुवर्थ निर्णय नाम का भी प्रकरण है, वहाँ पर इसको विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी तक ये क्लियर हुआ कि तिंग का अर्थ जो है कर्ता और कर्म होता है, फल और व्यापार अर्थ इसलिए नहीं होता तिंग का, क्योंकि वह अन्य लभ्य है, माने धातु के द्वारा लभ्य है, प्राप्त होता है, और इसका शक्यता व छेदक कौन होगा तिंग का? तो आश्रयत्व जो है वह शक्यता व छेदक होगा। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।